पृष्ठ संख्या 164। रचनाकारों की इस पीढ़ी में आलोचकीय विवेक, निस्संग दृष्टि और अभिव्यक्ति लाघव राजेश जोशी में सबसे अधिक है। उन्होंने भी अपने समान धर्माओं की तरह आलोचना जमकर नहीं की, पर जितनी और जैसी की वह कहने के लिए एक कवि की नोटबुक 2005 में और समकालीनता और साहित्य नाम से एक कवि की दूसरी नोटबुक 2010 में संकलित है। दोनों में गाहे बगाहे यूं ही अंकित कर ली जाने वाली टीप नहीं। पहली नोटबुक कविता पर केंद्रित है और दूसरी में कविता और गद्य, ब्रैकेट में दोनों का लेखा जोखा है। पहली नोटबुक के बारे में लेखक का कहना है कि इस किताब में कवियों या कविता पर केंद्रित जो टिप्पणियां हैं या कविता की किताबों पर समीक्षात्मक टिप्पणियां सब कुल मिलाकर नोट्स ही हैं। वह उन्हें डायरियां कहना भी मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि डायरी में एक व्यवस्था होती है, जबकि इन तथाकथित नोट्स में बेतरतीबी है, एक अव्यवस्था है। पर यह अव्यवस्था विषय के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये से नहीं, बल्कि रचना के भीतर अर्जित की गई स्वतंत्रता के अधिक करीब पहुँचने में है, ज़्यादा कारगर कोशिश के रूप में फलित होती है। 8वें दशक की कविता को सामने रखकर अपने से पहले की कविता को टटोलने की कोशिश में नोट्स का पुलिंदा है यह नोटबुक, जिसमें राजेश जोशी के अनुसार व्यवस्था कम बहक ज़्यादा है। हो सकता है उन्होंने यह कहना इसलिए मुनासिब समझा हो क्योंकि इसकी रचना किसी योजनाबद्ध ढंग से किसी विशेष विषय को केंद्र बनाकर जमकर नहीं की गई। पर क्या अपने पृष्ठ संख्या 165 से पहले की कविता को टटोलने की कोशिश ही वह केंद्रीय सरोकार नहीं है जो नोट्स के इस पुलिंदे को एक व्यवस्था देता है? क्या टटोलने की इस कोशिश के सार रूप में गढ़ा गया यह रूपक विचारणीय नहीं है कि हिंदी कविता की काया मुक्तिबोध, शमशेर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन के पांच तत्वों से बनी है और इसके प्राण तत्व निराला हैं? यह बात अलग है कि यह रूपक एक विशेष दौर की कविता पर ही लागू किया जा सकता है और इसमें बहुतों को अज्ञेय की अनुपस्थिति पर आपत्ति भी हो सकती है, पर गढ़ने वाले की नियत और सूझ पर शक नहीं किया जा सकता। राजेश जोशी के नोट्स के पुलिंदों पर संक्षेप में विचार करना उनमें बहुत कुछ तो छोड़ देने का अनदेखा कर देने जैसा है, पर प्रस्तुत प्रसंग में वैसा ही संभव है। इसलिए फिलहाल कुछ ऐसी बातों का जिक्र जो सिर्फ उनकी ही पहचान हो सकती हैं। पहली बात, ये नोट्स कवि और कविता पर ही केंद्रित हैं। जब वे इस दायरे से बाहर निकलते हैं, जैसे मणिकर्ण पर दो टिप्पणियों में नदी और जल और रंगों के बारे में, तो भी पाठक जानता है कि यह टिप्पणी एक कवि ही कर सकता है। वैसा लिखने के लिए एक कवि की ही आँख, उसकी संवेदनशीलता और कलम चाहिए। कुछ टिप्पणियाँ ऐसी जिनका आलोचना या उसके ह्रास से गहरा रिश्ता है, अड्डेबाजी का अंत, एक और दो, या फिर लेखक की मानसिक बनावट और घुमक्कड़ी से उसका रिश्ता। ऐसी टिप्पणियाँ लेखकीय संस्कृति के कुछ पक्षों की तरफ ध्यान दिलाती हैं। एक कवि की नोटबुक के नोट्स पांच हिस्सों में बटे हैं। दरअसल नोट्स तो मुख्यतः दो ही हिस्सों में है। पहले का क्रम में दूसरा शीर्षक ही है एक कवि की नोटबुक और दूसरे का टिप्पणियाँ। दोनों में फर्क बारीक है। पहले में शायद कवि यानी उसकी निजता का अनुपात कुछ ज़्यादा है और दूसरे में कम। टिप्पणियों के शीर्षक अलबत्ता यह भ्रम जरूर पैदा करते हैं, अपने समय का रूपक खोजती कविता, कामोद्दीपक, एरोटिक कविता, प्रेम कविता, गद्य कविता और कविता का 8वां दशक पर एक कवि की नोटबुक शीर्षक खंड में संकलित नोट्स में भी तमाम ऐसे सूत्र हैं जो कविता की रचना प्रक्रिया से उसकी समझ से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें आलोचक के विवेक और पैठ का साक्ष्य मिलता है। कुछ उदाहरण हैं। कविता में भाषा का बोझ बढ़ रहा है। कविता में अब ज़्यादा शब्द, ज़्यादा भाषा का उपयोग हो रहा है। उसमें पृष्ठ संख्या 166, शब्द अंतराल कम है। भाषा के मामले में वह मितव्ययी कविता नहीं है, वह ज़्यादा बोलती है। और फिर यह सवाल कि क्या यह इस नए बाजार की भाषा है? क्या यह वस्तुओं के आक्रमण से उपजी भाषा है, कविता और वस्तुएं? वह तमाम गंभीर प्रश्नों पर सूत्रों में बोलते हैं, दृष्टांतों के, रूपकों के, व्यंजनाओं के सहारे। मसलन जैसे ज्योतिष जो घट चुका और घटेगा दोनों को समेटता है, उसी तरह कविता को भी अपने डैने फैलाकर रखने चाहिए। ज्योतिष और कविता सामूहिकता वर्चस्वशाली का गुण नहीं है, उत्पीड़न का स्वभाव है। गाना, कवि एक दुनिया रचता है और उस सृष्टि के अस्तित्व में आते ही वह सबसे पहले उससे बाहर कर दिया जाता है या बाहर हो जाता है। ब्रैकेट में कवि का निर्वासन, फैंटेसी मुक्तिबोध के लिए बाध्यता है और वात्स्यायन जी के लिए मात्र एक प्रयोग। ब्रैकेट में फैंटेसी और प्रतिरोध, राजेश जोशी के लेखन में ऐसे व्याख्या सापेक्ष अर्थ गर्भित सूत्रों की भरमार है, वैविध्य भी, क्योंकि उन्होंने हर रंग के कवि पर कलम उठाई है। वरिष्ठों पर कुछ विस्तार से आएंगे, वह जन भी देश के धरातल पर। किताब की अंतिम रचना है, अरगान शीर्षक है इसका, जिसे वह खुद निराला की कविता पर एक बेतरतीब सी आधी अधूरी टिप्पणी कहते हैं। निराला के बहुवचनीय और बहुविध कविता संसार की केंद्रीयता को पकड़ पाने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। वह इसका बयान कुछ ऐसे करते हैं, उसका कोई एक अकेला की होल नहीं है, उपयुक्त चाबी के लगते ही जो खुल जाए या कम से कम खुलने लगे हमारे सामने। कोई ऐसी केंद्रीयता जहाँ से प्रवेश करके टोहते हुए आप उसे जानते चले जाएं, परत दर परत धीरे धीरे जो खुलता जाए, प्रकट हो जाए, इतना आसान नहीं, थोड़ी टेढ़ी खीर है। यह बयान कुछ दूर तक चलता है और निराला में निरालेपन की तरफ कुछ ऐसे सूत्रों में इशारा करता चलता है कि कोई समझदार पाठक चाहे तो उसमें से अनेक चाबियां और उतने ही प्रवेश द्वारों को पा सकता है। इस तथाकथित बेतरतीब सी आधी अधूरी टिप्पणी में उन्होंने अपने प्रवेश के लिए निराला की कविता महगू महंगा रहा का चुनाव किया है। परत दर परत वह इस कविता से गुजरते हुए मुक्तिबोध की कविता भूल गलती तक का रास्ता तय करते हैं। दोनों कविताओं के आधार पर, इन कविताओं की ही नहीं, दोनों कवियों, पृष्ठ संख्या 167 की काव्य चेतना उनके रचना समय और अभिव्यक्ति के ढब की तुलना करते हुए इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि शायद इसीलिए निराला की कविता मुझे अपने लिए ज़्यादा करीब लगती है। राजेश जोशी नाम के कवि की इस नोटबुक में कविता और कवियों के बारे में उनकी पसंद नापसंद को, विचार की परिधि के विस्तार को, आलोचक की अंतर्वेधी दृष्टि और विवेक को, और इस सबसे अधिक भाषा की रचनात्मकता को पंक्ति पंक्ति में, विशेषकर नोट्स के शीर्षकों में सराहा जा सकता है। वरिष्ठों में उन्हें मुक्तिबोध, शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह कुछ विस्तार से विचार करने लायक लगते हैं। इनमें अज्ञेय की लगभग अनुपस्थिति कुछ चौंकाती है। ध्यान देने की बात है कि इन कवियों पर उन्होंने आधार शीर्षक में कुछ विस्तार से विचार किया है। एक कवि की नोटबुक में सिलसिला कुछ व्यापक हो गया है। अपने समकालीनों और इर्द गिर्द के रचनाकारों में विष्णुनागर, अरुण कमल, वेणुगोपाल, कुमार विकल, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेन्द्र पति आदि की किसी एक कविता या एक प्रवृत्ति के सहारे वह उसके रचनात्मक भूल को पकड़ने का प्रयास करते हैं। वही पद्धति किसी ऐसी केंद्रीयता की तलाश जिसके पकड़ में आने पर रचना का मर्म परत दर परत खुलता जाता है, यथावसर तुलनात्मक टिप्पणियों के साथ। क्या यह मात्र संयोग है कि उनके पसंदीदा कवियों में मध्य प्रदेश वासियों की संख्या औरों के अनुपात में कुछ ज्यादा है? इस नोटबुक में एक दिलचस्प और विचारणीय टिप्पणी आलोचना की दशा पर भी है। अड्डेबाजी के अंत का शायद सबसे बुरा प्रभाव हमारी आलोचना पर हुआ है। खुली बातें जब खत्म होने लगती हैं तो कुटिल कानाफूसी उसकी जगह ले लेती है। अड्डेबाजी के अंत ने लेखक को सुमण कान का कच्चा और अपनी आलोचना और मजाक के प्रति बहुत अनुदार बनाया है। राजेश जोशी के दूसरे संकलन समकालीनता और साहित्य में शीर्षक के अनुरूप उन्होंने अपने समय में कविता और गद्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है तरह तरह से। खुद उनके अनुसार इस दूसरी नोटबुक का मिजाज थोड़ा अलग है। अलग इसलिए कि इसमें कविता के अलावा गद्य पर लिखी गई पृष्ठ संख्या 168 टिप्पणियां तो हैं ही, जीवन जगत के नाना व्यापारों और पक्षों पर, मसलन वनस्पतियों और परिंदों के नाम, आवारगी और कविता, पुराने सिक्के नए सिक्के, तारा पीठ की तारा तारा माँ जैसी अनेक टिप्पणियां शामिल हैं। पर नज़र उनकी अपने समय पर ही है, इसलिए जब वह अंत में रामचरितमानस को पढ़ने के सुख और दुख की बात करते हैं तो यह भी अपने समय में अरघान के बतौर वैसा ही सलूक है जैसे पहली नोटबुक के अंत में निराला के साथ किया गया था। यानी अपने समय में खड़े रहकर पूर्व परंपरा की तरफ मुड़कर उसके दाय की पहचान करना। राजेश जोशी द्वारा प्रस्तुत यह लेखा जोखा बहुत सी बातों के लिए महत्वपूर्ण है। संकलन की शुरुआती टिप्पणी कविता पर, जिसे यदि साहित्य पढ़ लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, उनके अटूट विश्वास का बोध कराती है। शीर्षक है बची हुई विश्वसनीय आवाज, जिसका पहला ही वाक्य है, कविता संभवतः हमारे समय की वह आखिरी आवाज है जिसे बाजार और हिंसा अभी तक मलिन और गुमराह नहीं कर सकी है। जाहिर है कविता की ताकत पर यह कुछ ज्यादा ही भरोसा करना है, क्योंकि उनका मानना यह भी है कि दृश्य में हस्तक्षेप करना कविता का ही जैविक विस्तार है, जबकि वास्तविकता यह है कि चारों ओर का परिदृश्य यानी कविता समय कविता पर भले ही निर्णायक असर डाले, पर अपने सीमित पाठक समुदाय को लिए दिए दृश्य में कारगर हस्तक्षेप करना कविता के लिए किस रूप में और कितनी दूर तक संभव हुआ है, यह विचारणीय है। बहरहाल संकलन के अलग अलग खंडों में राजेश जोशी ने जो कुछ भी टिप्पणियां, नोट्स और समीक्षा के रूप में लिखा, कुछ कवि कुछ किताबें कुछ कवि और कुछ और कविताएं, ब्रैकेट में शीर्षकों पर शमशेर के कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं की छाप है, तथा गद्यकाल नाम से उनमें ना कोई योजना है ना तरतीब, इसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिससे उनकी अलग और विशिष्ट पहचान बनती है। शीर्षक के अनुरूप उनके विचार केंद्र में जितना साहित्य है उतना ही समय। साहित्य और समय की परस्पर संबद्धता, साहित्य की विशिष्टताओं, उसके संकटों, उसके शिल्प और भाषा पर बात करते हुए रचना समय की वास्तविकता घटनाक्रम बराबर उनके ध्यान में बना रहता है। उदाहरण के लिए समकालीन कविता के संकट की पहचान के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सन 1985 से 90 के बीच की घटनाओं पर विचार किया जाना हमारे जातीय मानस को समझने के लिए जरूरी है। पृष्ठ संख्या 169। इसी तरह यह भी कि 15 अगस्त 1947 को एक काल्पनिक विभाजक रेखा मानकर समय को स्वतंत्रता पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर में विभाजित कर लेना, विमर्श के लिए तय की गई सुविधा भर मान लेना, एक किस्म का सरलीकरण होगा। समकालीनता पद के इस्तेमाल के बारे में भी उन्होंने सचेत किया कि हम विभाजक रेखाओं को स्वीकार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यानी समकालीन घटनाक्रम हो या साहित्य, उस पर विचार करने से पहले यह साफ कर लेना जरूरी है कि हम उसकी शुरुआत और अंत कहाँ से कहाँ तक मानते हुए अपनी विचार परिधि की सीमा निर्धारित करते हैं। साहित्य की बनावट और बुनावट पर समकालीन घटनाओं का प्रभाव जिस रूप में पड़ा है, इसका जिक्र उन्होंने मध्य वर्ग के जीवन की रफ्तार और गणित में आने वाले बदलाव पर बिल गेट के कंप्यूटर की आमद के प्रभाव के रूप में किया। कैसे नॉलेज बेस्ड ज्ञानाश्रयी समाज जब इंफॉर्मेशन बेस्ड सूचनाश्रयी समाज में बदलता है, तब कविता और गद्य की भाषा का फर्क खत्म हो जाता है। इसी तरह उन्होंने गोदान और कामायनी और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के सार तत्व 1931 में एक ही दौर की रचनाएं होने के कारण कुछ समानांतरता लक्ष्य की। अपने सार तत्व और पढ़ने के बाद मन पर बच रहे प्रभाव में महान ट्रेजिडीज ही हैं, क्योंकि निराशा से उपजी रिक्तता का संबंध चौथे दशक की मंदी और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ रचनाकार की निजी जीवन स्थितियों से भी उतना ही है। पर सामाजिक स्थितियों के साथ समाजशास्त्रीय अंदाज में जोड़ बिठाने की कोशिश का समर्थन नहीं करते राजेश जोशी। ऐसी कोशिश से रचना को निरर्थक सवालों के कटघरे में खड़ा कर देने का खतरा पैदा होता है। रचना हर छोटी बड़ी घटना का साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करती। कविता के बाहर का समय तो सामाजिक राजनीतिक समय होता है, जीवन के कार्यकलापों और हलचलों से भरा समय। कविता के भीतर का समय इसी बाहर के समय से आयात किया गया समय होता है। बाहरी समय की अनुकृति नहीं, पुनर्सृजति समय, जो ना बाहर के समय की अनुरचना होता है और ना ही उसकी अनुकीर्तन होता है। इतना ही है कि उसकी लय में जो अंतर्निहित गति होती है, वह बाहर पृष्ठ संख्या 170 के समय के दबाव को प्रकट करती है। ध्यान देने की बात है कि राजेश जोशी ने 80 के बाद से कविता में व्यवहारों की बढ़त पर ऐतराज किया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने वनस्पति को वनस्पति शास्त्र में बदल दिया है। ब्योरों की बढ़त कभी कभी कविता के आकार में अनावश्यक विस्तार करती है। उसकी तुलना में छोटे आकार में लिखी गई रचना अपनी भाषा के बारे में ही नहीं, अपनी अंतर्वस्तु के बारे में भी ज्यादा चौकन्नी होती है। कविता की रचना प्रक्रिया शिल्प, समय और समाज से उनके रिश्ते की प्रकृति, उसकी ताकत जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों और नोट्स में राजेश जोशी ने बड़े मानीखेज सूत्रों में विचार किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ कवियों और कुछ किताबों पर दो खंडों में और गद्य काल पर एक खंड में जो संक्षिप्त समीक्षात्मक आलेख लिखे, वह भी अनेक अर्थों में विशिष्ट हैं। इनमें भी ना आपस में कोई संबंध है ना कोई तरतीब। दो आरंभिक लेखों में समकालीनता की हद को कुछ पीछे ले जाते हुए उन्होंने प्रसाद के नाटकों की कविता और मायावस्की की कविताएं पर अपने समकालीन होने के कारण नहीं, उनकी रचना में समकालीनता यानी वर्तमान समय में उनकी अर्थवत्ता के नज़रिए से विचार किया। इसी खंड में आगे चलकर उन्होंने नरेश मेहता, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन जैसे वरिष्ठ कवियों के किसी एक काव्य संग्रह या किसी एक केंद्रीय विशेषता का विश्लेषण किया बड़ी निजता और निष्ठा से। और तो और, गद्य काल में हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाओं के बीच उनके लेखन में कविता की एक महीन बुनावट खोज निकली और इस बुनावट को घायल वसंत उद्धरण से स्पष्ट किया। खास बात यह कि उन्होंने उसकी व्याख्या कलावादी कविता के विरुद्ध एक तीव्र सामाजिक अनुभूति की कविता के रूप में की। राजेश जोशी ने अपनी नज़र जानी पहचानी लोकप्रिय रचनाओं से ज़्यादा उन रचनाओं पर डाली जो किसी वजह से अनदेखी या कम देखी रह गई हैं। इनमें 1857 पर लिखी गई कुछ विस्मृत और कुछ ऐसी कविताओं का जिक्र है जो अनदेखी रह गईं। इनके अलावा कुछ जाने माने कवियों की कम चर्चित कविताओं की तरफ भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, जिनमें भोपाल के दिवंगत कवि सोमदत्त की दो कविताओं के अलावा जाने माने कवि कुंवर नारायण की कविता नीरों का संगीत प्रेम उल्लेखनीय है। इन कविताओं पर पृष्ठ संख्या 171 पाठकों ने कम ध्यान दिया था। इसी क्रम में उन्होंने स्वर्गीय कवि वेणुगोपाल की आवारगी और कविता का विश्लेषण किया। एक ऐसा कवि जिसे स्वभावतः अपने अवघड़पन और अजीबोगरीब ढंग की जिंदगी जीने के कारण अपेक्षित महत्व तो नहीं मिला था। कुछ अपेक्षित कवियों और रचनाओं को विषय बनाकर राजेश जोशी ने अनछुए अनदेखे विषयों को तो आलोकित किया ही, कुछ ऐसे कवियों पर भी ध्यान दिया जिनसे बड़ी अपेक्षाएं अधूरी रह गईं। इनमें सुकांत भट्टाचार्य, कुल आयु 26 वर्ष, और हिमालय के गायक चंद्र कुंवर बर्तवाल, कुल आयु 28 वर्ष, उल्लेखनीय है। राजेश जोशी की समीक्षक नज़र का विस्तार और वैविध्य आश्चर्यजनक है। अपने समय की दो युवतम पीढ़ी की कवयित्रियों में नीलेश रघुवंशी चौसर पर लिखी कविता के कारण और कात्यायनी हॉकी खेलती लड़कियां शीर्षक कविता के कारण उन्हें विचारणीय लगी। पहली इसलिए कि उसमें कुछ उम्रदराज ग्रामीणों के चौसर खेलने का रोचक वर्णन है। कविता खेल को बिंब या रूपक में बदलकर किसी अन्य बात की ओर संकेत करने की कोशिश नहीं करती। दूसरी इसलिए ध्यान आकर्षित करती है कि उसमें वर्गीय पहचान के बनिस्तवत लिंग अस्मिता का प्रश्न प्रमुख हो गया है। ये एक छोटे शहर की लड़कियां हैं। इसमें हमारे घरों में लड़कियों को लेकर सोचने समझने के ढंग से टकराव की ध्वनियां हैं। ये लड़कियां उस सोच से निपटने की तैयारी करती अपने घर लौटती हैं। दो कविताएं, दोनों की अलग प्रकृति, अतः विश्लेषण के अलग तर्क। लगभग इसी ढंग से उन्होंने अपने जिन हम उम्र कवियों की रचनाओं को विचार का विषय बनाया, उनमें कई रंग के कवि शामिल हैं। देवी प्रसाद मिश्र, बद्रीनारायण, लीलाधर मंडलोई, सुदीप बनर्जी, विनय दुबे, मनमोहन और मलय आदि। लिखने के अनुपात और वैचारिकता में सब एक दूसरे से अलग। इन नामों के चुनाव पर भी कुछ मतभेद की गुंजाइश हो सकती है। वह बहुत कुछ व्यक्ति की निजी पसंद नापसंद का मामला होता है। इनमें से मनमोहन जैसे कवियों ने तो परिणाम में भी बहुत कम लिखा है, पर यदि राजेश जोशी इन पर टिप्पणियाँ या समीक्षात्मक आलेख लिखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो इसके उनके अपने तर्क तो हैं ही। हर कवि और कविता को उसकी विशिष्टता में पहचानने की क्षमता भी है, और अनायास कुछ प्रतिमानों का प्रस्ताव भी जाहिर है। इन प्रतिमानों की कोई निश्चित व्यवस्था या तंत्र नहीं है। उनका पृष्ठ संख्या 172 स्वरूप रचना की प्रकृति और बनावट से तय होता है। उदाहरण के लिए मालवा के लोक कवि भावसरे बा के मूल्यांकन की कसौटी ठीक वही नहीं हो सकती जैसी नागर कवियों की। यह विविधता गद्य काल में भी बरकरार है। वह प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी से शुरुआत करते हैं, पर प्रेमचंद के अलावा उन्होंने दो ही और कहानीकारों पर विचार किया है, स्वयं प्रकाश और शशांक। इन दोनों के अलावा एक नाम और है, हरिशंकर परसाई का, जिनके निबंध और कहानियाँ राजेश जोशी को इसलिए विचारणीय लगी क्योंकि उनकी कला में लोक कथाओं की सरलता और नाटकीयता दोनों हैं। इसके अलावा राजनीति परसाई की रचना का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। परसाई ने खुद लिखा भी है कि राजनीति मनुष्य की नियति तय कर रही है। उन्हें कहानी और निबंध दोनों में परसाई एक समर्थ शिल्पकार मालूम होते हैं। उन्होंने फंतासी और यथार्थ के समन्वय के अद्भुत प्रयोग तो किए ही। उनकी रचनाओं की विशेषता इस बात में है कि उनका कलेवर ऊपर से भले ही यह एहसास कराए कि जैसे फक्कड़िया अंदाज में कोई सामाजिक विद्रूपताओं को उधेड़ रहा है, पर उसके भीतर एक गहरी जिम्मेदारी अंतर्निहित है। परसाई अपने विशिष्ट शिल्प के अलावा राजेश जोशी को इसलिए महत्वपूर्ण रचनाकार लगते हैं कि हमारे समाज की शासक राजनीति के ढोंग, कठमुल्लेपन, क्रूरताएं और विसंगतियों को जितना परसाई ने बेनकाब किया है, उतना हमारे समय के किसी अन्य लेखक ने नहीं। इस खंड में श्रीलाल शुक्ल एकमात्र ऐसे कथाकार हैं जिनके दो उपन्यासों मकान पर कुछ नोट्स बेतरतीब से और राग दरबारी पर कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। नोट्स बेतरतीब होने के बावजूद कुछ लंबे और टिप्पणियाँ राग दरबारी उपन्यास की टिप्पणियों को रेखांकित करने के बाद उसे खिलंदड़े गद्य के ऐसे उदाहरण के रूप में देखने दिखाने का प्रयास जो आज़ादी के बाद के भारतीय समाज के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विद्रूप की जितनी अधिक परतों में झांकने और उसे उधेड़ने का काम करते हैं, उतना कम ही रचनाकार कर पाते हैं। इस क्रम में उन्होंने दूधनाथ सिंह के उपन्यास आखिरी कलाम का कुछ विस्तार से विश्लेषण किया है। उन्होंने खुद उसको कुछ असंबद्ध सी टीपें के खाते में भले ही डाल दिया है, पर इस रचना के औपन्यासिक शिल्प के बारे में पृष्ठ संख्या 173, इन टीपों में कुछ मौलिक और महत्वपूर्ण सूत्रों में उनका विस्तार किया। इसका प्रारूप सफरनामे का है कि यह औपन्यासिक गद्य के भीतर एक स्वतंत्रता आंदोलन है। उसमें एलियनेशन इफेक्ट पैदा करने वाले व्रेखतियन नाटक की प्रविधि की खोज के बाद अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि तत्सत पांडे की मृत्यु और जमील का पागल होना ही जैसे इस पूरे उन्माद की अनिवार्य परिणति है, वैसे ही जैसे पागलपन के उन्माद ने कभी मंटो के यहाँ टोबा टेक सिंह को पैदा किया था। अन्य गद्य विधाओं में राजेश जोशी ने मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन के बीच हुए पत्राचार, नामवर सिंह की आलोचनात्मक पुस्तक कविता के नए प्रतिमान और विश्वनाथ त्रिपाठी की विधाओं के खांचे से मुक्त रचना नंगा तलाई का गांव पर ध्यान दिया। तीन रचनाएं, तीन विधाएं, विश्लेषण की तीन पद्धतियां, सब में अलग अलग राहों से रचना के मर्म तक पहुंचने और सस्वर चिंतन की शैली में संप्रेषित करने की व्यग्रता, यथावश्यक छोटी बड़ी टीपों, नोट्स और समीक्षा धर्मी छोटे बड़े आलेखों के माध्यम से जहाँ तक बात ले जाए वहीं तक कम ना ज्यादा, यही राजेश जोशी की शैली की विशिष्ट पहचान है। इस क्रम में एक और उल्लेखनीय नाम नीलाभ का है। नीलाभ बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। एक साथ कवि, गद्यकार, अनुवादक, पटकथा लेखक, आरंभ में प्रकाशक भी। उनके अनुभव का क्षेत्र व्यापक है। सबसे अधिक महारत उन्हें अनुवाद कर्म में हासिल है। इस कारण साहित्य की विविधता में विचरण करने का अवसर उन्हें सहज रूप में मिलता रहा है। आलोचनात्मक रचनाओं में उनके दो संकलन प्रकाशित हुए, प्रतिमानों की पुरोहिती 2005 और पूरा घर है कविता हिंदी कविता का परिदृश्य 2008 जैसा शीर्षकों से प्रकट है। दूसरा संकलन कविता केंद्रित है और पहले का दायरा अपेक्षाकृत व्यापक है। लेखक के अनुसार पहले संग्रह के लेखों का प्रमुख सरोकार साहित्य और विशेष रूप से कविता से है, मगर इनका दायरा कुछ ऐसे बेढंगेपन से विस्तृत है कि वह राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, अन्य कला रूपों और जिसे शास्त्रीय शब्दावली से कहते हैं सिद्धांत विवेचन तक फैला हुआ है, जिसे नीलाव ने बेढंगेपन से विस्तृत दायरा कहा है। दरअसल वही इसकी खासियत है। गालिब के हवाले से मुद्दा अंक शीर्षक में नीलाव ने इन लेखों की प्रेरणा और प्रकृति का जो खुलासा किया है उससे इनकी शक्ति और पृष्ठ संख्या 174 सीमा दोनों का अंदाजा हो जाता है। पहली बात तो यह कि उनकी या बाद की पीढ़ी में ऐसे रचनाकार नहीं के बराबर हैं जो सिद्धांत विवेचन के बीहड़ में प्रवेश करने का हौसला रखते हों, क्योंकि वर्तमान समय में वैसा करने के लिए विशुद्ध साहित्य केंद्रित शास्त्र चर्चा से काम नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र और अन्य कला रूपों की दुनिया की खोज खबर रखना भी अपेक्षित होता है, भले ही उससे कुछ अतिरिक्त फैलाव और बेढंगेपन की आशंका पैदा हो जाए। इस रास्ते के खतरे अपनी जगह हैं, जिन्हें उठाने का हौसला नीलाल ने दिखाया है। इन लेखों की रचना महज फरमाइशी तौर पर नहीं की गई है, गो कि वह लिखे नहीं लिखवाए गए हैं, पर उनके पीछे गंभीर उद्यम और कुछ मसलों को अपने और औरों के लिए साफ करने, उन्हें बेहतर तौर पर समझने समझाने की व्यग्रता साफ दिखाई पड़ती है। आलोचना की वर्तमान स्थिति के बारे में अपनी शिकायत को लेखक ने कलाओं का अंतर संबंध शीर्षक पहले ही लेख में अंत में दर्ज कर दिया है। लेखक का यह दावा भी सही है कि उसकी शैली में उक्त वैचित्र नहीं है। वह लेख की शुरुआत अक्सर सवाल से करता है, अपने भीतर कुलबुलाते कुछ सवालों के जवाब की तलाश में वह जैसे यात्रा पर निकलता है। उत्तर ढूंढने की प्रक्रिया में वह प्रायः प्रश्न के सीमित दायरे के भीतर बाहर यात्रा करता है, कहीं कहीं कुछ असंबद्ध से लगने वाले क्षेत्रों तक भी। इस यात्रा के दौरान वह अपने से और जरूरत पड़ने पर औरों से टकराता है। बीच में प्रसंगवश कुछ जानकारियाँ, कुछ सलाहियतें, कुछ सवाल जवाब, प्रश्न को लेकर कुछ छानबीन और अंत में किसी निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश। यह परिक्रमा कभी कुछ छोटी और विषय के अनुरोध से कभी बहुत घेरदार भी हो सकती है। बात शुरू हुई है तो आगे तक जाएगी वाले अंदाज में। इन लेखों में नीलाभ जो विषय उठाते हैं, प्रायः उसकी शुरुआत उसके बारे में उठे किसी विवाद से होती है, या फिर इस बात से कि उस पर वह नए सिरे से बात करने की जरूरत महसूस करते हैं। प्रेमचंद की विरासत और प्रासंगिकता का प्रश्न। पहले ढंग के लेख हैं और अमान चित्रित रास्तों की मंजिल और प्रतिमानों की पुरोहिती दूसरे ढंग के। इन पिछले दो निबंधों में वह नामवर सिंह जैसी शख्सियत से टकराते हैं, अंधेरे में और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनती की व्याख्या के संदर्भ में, पृष्ठ संख्या 175। नीलाव ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन लेखों के विषय चयन की जिम्मेदारी लिखने वाले की थी या लिखवाने वालों की। अधिक संभावना इसी बात की है कि माध्यम के स्तंभ निरंतर में छपने वाले विषयों का चयन लेखक का होगा, बाकी कुछ विशेष अवसरों और आयोजनों से जुड़े होने के कारण अवसर के तकाजे के तहत लिखे गए होंगे और वर्तमान साहित्य में छपने वाले लेख विशेषांक की जरूरत के हिसाब से हो। यह भी सकता है कि लंबे लेख पत्रिकाओं के लिए और छोटे आयोजनों में मंचीय प्रस्तुति के लिए। नीलाभ के लेख की एक विशेषता यह है कि वह किसी विषय पर एक ही दिशा में धारा प्रवाही ढंग से बात रखने के बजाय नोट्स की शक्ल में उसके अलग-अलग पक्षों पर टुकड़ों में विचार करते हैं। उसका एक समुच्चय सा पाठक के सामने होता है, कुछ ऐसे जैसे किसी केंद्र को अलग-अलग कोणों से आलोकित किया जा रहा हो। नई रचनाशीलता, समस्याएं और चुनौतियां। में रचनाशीलता को वह सिर्फ साहित्य तक सीमित न रखकर चित्रकला, नाटक, संगीत और अंततः फिल्म जैसे कला माध्यमों में उसके प्रतिफलन को आंकते हैं। विचार क्रम का सूत्र वाक्य है, रचनाशीलता को निर्धारित करते समय कला और समाज के आपसी रिश्तों की भी चर्चा अनिवार्य हो जाती है, और यह परखना भी जरूरी हो जाता है कि कलाकार ने निजी और सार्वजनिक जीवन के द्वंद्वात्मक संबंधों को किस हद तक पहचान कर अपनी रचना को संवेदना और विचार दोनों से लैस किया है। प्रेमचंद की विरासत की चर्चा करने की तात्कालिक प्रेरणा उन्हें उस विवाद से मिली जो CBSE के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला को हटाकर मृदुला सिन्हा के उपन्यास ज्यों मेहंदी को रंग को लगाने का शुरू हुआ। इस प्रसंग पर विचार करते हुए नीलाभ ने इस विवाद में हिंदी के लेखकों, लेखक संगठनों और पत्र पत्रिकाओं की हिस्सेदारी का दो टूक विश्लेषण ही नहीं किया, इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि इस कजबहसी में कुछ बुनियादी सवाल जिन पर गौर किया जाना चाहिए था, ये अक्सर छूट गए। अंततः यह पूरा प्रकरण महज एक प्रवाद पर्व बनकर रह गया। इस निर्णायक वाक्य के बाद नीलाभ ने विस्तार से प्रेमचंद के साहित्यिक कद का जायजा लिया। ऐसा करते हुए कुछ पूर्व परिचित बातों को दोहराया। पृष्ठ संख्या 176, जिनमें समूचे हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रेमचंद के प्रति लगाव, वास्तविक जीवन से समाज विशेष के सत्य से विषय वस्तु का चुनाव कर पाठकों की अभिरुचि में परिवर्तन करने में उनकी भूमिका, सामाजिक बुराइयों की शिनाख्त और विरोध, उनकी पक्षधरता जैसी बातों की चर्चा शामिल थी। पर महत्व तो उन निष्कर्षों का है जिन पर वह इस लंबी चर्चा के बाद पहुंचते हैं। इतना ही कि प्रेमचंद की विरासत की पहचान उन सारे आदर्शों और मूल्यों के संदर्भ में की जानी चाहिए जिन्हें 1857 से लेकर 1947 तक भारतीय समाज ने अर्जित किया और जिनमें प्रेमचंद ने अपने अनुभवजनित निष्कर्षों और विचारों से बहुत कुछ जोड़ा। प्रेमचंद की विरासत को वह हिंदी भाषा और साहित्य के दायरे से बाहर जाकर समूचे भारतीय समाज की विरासत के रूप में देखने की सिफारिश करते हैं। उनका तर्क है कि प्रेमचंद का कृतित्व अपनी समग्रता में पहली बार आने वाले समय के साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकारों का कार्यक्रम और कार्यसूची निर्धारित कर देता है। प्रेमचंद की विरासत के उत्तर पक्ष का जायजा लेते हुए जो सवाल उठाए गए हैं, वह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में किसी भी रचनाकार के ऊपर लागू होते हैं और विरासत के सवाल के आयाम का विस्तार करते हैं। विरासत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? विरासत सिर्फ बाद के आने वाले रचनाकारों के लिए होती है या उस जनता के लिए भी जो इन रचनाओं का विषय है? कथाकारों के अलावा सामान्य साहित्य प्रेमियों, विभिन्न संगठनों, राजनेताओं और अंततः हम सबके लिए भी प्रेमचंद की विरासत का वास्तविक अर्थ क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जो किसी भी रचनाकार की कृतियों के सरमाए के बारे में उठाए जा सकते हैं। अंत में उन्होंने एक टिप्पणी की और एक काबिले गौर सवाल किया। एक राजनीति के आगे मशाल लेकर चलने वाली सच्चाई को उद्धृत बहुत किया गया पर माना कतई नहीं गया। और दो, प्रेमचंद के बाद जनता और साहित्य के बीच दूरी बढ़ती क्यों गई है? नीलाभ ने आलोचना थोक में नहीं की, पर उनकी दृष्टि का प्रसार विगत और वर्तमान दोनों पर है। मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद पंत, महादेवी, निराला, प्रेमचंद के बाद गालिब और मीर भी उनके आलोचना वृत्त में मौजूद हैं। समकालीनों में नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन जैसे वरिष्ठों के साथ रघुवीर सहाय, धूमिल, मंगलेश डबराल, असद जैदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इब्बार रब्बी, पृष्ठ संख्या 177, गोरख पांडे और निलय उपाध्याय जैसे तमाम रचनाकारों की उपस्थिति नीलाभ की व्यापक साहित्यिक रुचि और अध्ययनशीलता का सबूत है। खास बात यह है कि नीलाभ ने साहित्यिक रचनाशीलता को बराबर सामाजिक परिदृश्य और अन्य कला रूपों के हवाले से देखा परखा जरूर है, पर उनमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की ईमानदारी भी है। साहित्य और चित्रकला के बाद मैं संगीत पर बहुत संक्षेप में ही कुछ कहूँगा, क्योंकि मुझे इस कला रूप की उतनी ही जानकारी नहीं है जितनी चित्रकला की। हिंदी के आलोचकों को, विशेषकर विश्वविद्यालयों में पनपने वाले अध्यापकों को आत्मतुष्ट, आत्ममुग्ध और अपनी झूठी ताकत के नशे में मखमूर समझने वाले रचनाकार की अपनी सीमा की यह स्वीकृति समझ में आती है। पर उसकी आलोचकीय टीपों में न विवेक की कमी है न साहस की। नीलाभ ने अधिकांश आलोचनात्मक व्यवस्थित लेखों के रूप में की, बेतरतीब टिप्पणियों या नोट्स के रूप में नहीं। इसलिए जब वह निर्णायक टीपें दर्ज करते हैं तो वह उन तक पहुंचने के लिए तारतमिक विवेचन की यात्रा तय करते हैं। लेखक की बात को पाठक तक पहुंचाने वाले पुल का काम करने वाली आलोचना के बारे में उनका यह कहना तर्कसंगत ही है कि भाषण और इंटरव्यू श्रम और चिंतन से लिखे लेखों की जगह नहीं ले सकते। उन्होंने बड़े बेलाग ढंग से श्रोतानुकूलित और अवसरानुकूलित आलोचना की खबर ली। सदा सर्वदा मंच पर विराजित मठाधीशों के लिखित में अंतर्विरोध और असंगतियों की तरफ ध्यान दिलाया। कुछ समान धर्मिताओं की तरफ इशारा किया। इन सर्च ऑफ कॉमन परसूट की तर्ज पर नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी दोनों ने सहयोगी प्रयास की बात की, साथ ही यह भी कि दो टूक निर्णय देने से अशोक और नामवर जी दोनों बचते हैं। अपने बारे में यह सफाई भी पेश की कि कविता के नए प्रतिमान के 2 दशक बाद निर्माण की पूरी प्रक्रिया के सामने प्रश्न चिन्ह लगाने की पुनर्विचार की जरूरत क्यों पड़ी। इसी जरूरत के तहत काव्य चिंतन के नए आयाम की रचना की गई। संग्रह के इस अंतिम लेख में कविता क्या है, प्रश्न से जूझने की व्यग्रता दिखाई पड़ती है। खास बात यह है कि लेखक इस सवाल पर संस्कृत आचार्यों की चिंतन परंपरा से भी बेखबर नहीं है। वह हिंदी के आलोचकों और कवियों की राह से गुजरता हुआ समकालीन रचनाओं तक का सफर तय करता है। यह यात्रा एक एक रेखीय है ना समतल। विविध वर्णी, पृष्ठ संख्या 178। रचनाओं से, वक्तव्यों से और स्थितियों से गुजरते हुए बहुत सी बातों का लेखा जोखा करने के बाद उनका प्रस्ताव है कि सभ्यता समीक्षा ही वह अनिवार्य उत्तरदायित्व है जो कविता ही नहीं अन्य चिंतन का भी प्राथमिक लक्ष्य होता है। कहना ना होगा कि महत्व निष्कर्ष से ज्यादा उस यात्रा का है जो उसने तय की है। इस संकलन के 3 लेख विशेष ध्यान देने योग्य हैं, इतिहास, गल्प और उपन्यास, अमान चित्रित रास्तों की मंजिल और इतिहास और आख्यान। पर इसका यह अर्थ नहीं कि बाकी लेखों का महत्व तो नहीं। नीलाव के दूसरे संकलन पूरा घर है कविता में, जैसा शीर्षक से स्पष्ट है, हिंदी कविता के परिदृश्य का जायजा लिया गया है। इस बार रब्बी की कविता पर लिखे गए संकलन के अंतिम लेख का शीर्षक भी यही है। संकलन के पूर्वार्ध में पूर्वजों का स्मरण किया गया है कुछ विस्तार से और उत्तरार्ध हमसफर कवियों पर केंद्रित है। पूर्वजों में छायावाद के 3 बड़े नामों पंत, महादेवी और निराला के अलावा भगवती चरण वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान शामिल हैं। चूंकि ये लेख किसी योजना के तहत नहीं लिखे गए, इसलिए प्रसाद की अनुपस्थिति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरे हिस्से में भी नामों का चुनाव चाहे अवसर के अनुरोध से किया गया हो या लेखक की अपनी पसंद से, पर वह समसामयिक कविता पर दृश्य के प्रतिनिधि नाम हैं जिनमें अरुण कमल की अनुपस्थिति की भरपाई उन्हें पुस्तक ही समर्पित करके कर दी गई है। दूसरे भाग के शुरू में आज की कविता का माहौल शीर्षक से की गई टिप्पणी नाकाफी होने पर भी जिन स्थितियों और जरूरतों की तरफ ध्यान दिलाती है वह महत्वपूर्ण है। नीलाव ने इन आलोचनाओं में वस्तुपरकता का दावा नहीं किया। उनका यह कहना भी सही है कि कला को देखने का नजरिया हमेशा व्यक्ति सापेक्ष होता है और इसके पीछे बहुत से तत्व काम करते हैं। कला को देखने वाले की अपनी अभिरुचि से लेकर उसकी जानकारी तक बहुत कुछ ऐसा है जो कला को जांचने के काम को वस्तुपरक नहीं रहने देता। जब आकलन करने वाला व्यक्ति होगा तो वह खुद से कहाँ तक बचेगा। शर्त इतनी ही होनी चाहिए कि उसका आकलन राग द्वेष से प्रेरित प्रायोजित ना हो। अपने लेखों के बारे में नीलाभ ने स्वीकार किया कि वह वस्तुपरकता से बचकर एक साथी कारीगर का जायजा है, और जिसका जायजा लिया जा रहा है वह पृष्ठ संख्या 179 भी अपने तई एक कारीगर ही है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जायजा लेने वाले कारीगर का अपने विषय से रिश्ता कैसा है। इसका प्रभाव जाने अनजाने उसकी आलोचना पर, यानी वस्तु परकता साधे रखने के प्रयास पर जरूर पड़ता है। यानी उम्र में, रचना समय में, काव्य संसार में दूरी और समीपता उसके निष्कर्षों को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। यह अंतर अंग्रेजों और समकालीनों की आलोचना के बीच साफ दिखाई पड़ता है। जो सम्मान या श्रद्धा के पात्र हैं, उनकी असफलताओं और कमजोरियों का बखान उतनी निर्ममता या तटस्थता से करना संभव नहीं होता जितना समकालीन समान धर्माओं का। इसका प्रमाण है पूर्वार्ध में भगवती चरण वर्मा पर संकलित लेख, आत्मपरकता की अंधी गली। जिसमें उनकी यौवनकालीन रचनाओं के उत्तरवर्ती काव्य में पर्यवसान को मानवीय सहानुभूति से कुछ ऐसे देखा गया है कि मनुष्यों की ही तरह कविता भी कई बार गरिमा के साथ बुढ़ाने में विफल रहती है। ऐसा नहीं है कि पूर्वजों का आकलन करते हुए वह कोई दबाव महसूस करते हों। निराला के दाय की चर्चा करते हुए उन्हें यह कहने में संकोच नहीं होता कि इस कार्यभार को पूरा करने के लिए हमें निराला से बहुत मदद नहीं मिलेगी। उनकी विराट उपलब्धियों की तरह उनकी विफलताएं भी विराट हैं, पर कुल मिलाकर यह है तो पूर्वजों को अंजलि दान ही। अपने समकालीन साथियों की कविता का आकलन नीलाम ने बड़ी किमियागीरी से किया है। जाहिर है, इन सीमित आकार वाले लेखों में किसी कवि की समग्र रचनाओं का आकलन नहीं हो सकता, पर नीलाभ अक्सर रचनाओं का काफी बड़ा दायरा घेरते हैं। जिन विशेषताओं को वह लक्ष्य करते हैं, उनका आधार जाहिर है कविताएं ही होती हैं। वह बात हवा में नहीं, किसी कविता के हवाले से शुरू करते हैं और फिर कविता दर कविता बात आगे बढ़ती जाती है। अंत तक पहुँचते पहुँचते कवि के रचना क्रम में आने वाले परिवर्तनों, खूबियों, खामियों से पाठक का परिचय होता चलता है और अंत में नीलाभ अपनी अपेक्षाओं का यथा आवश्यक जिक्र करते हुए कविता की ताकत या कमजोरी पर अपनी टिप्पणी दर्ज करते हैं। नीलाभ की आलोचना भाषा में ना कवियाने का रोग है, ना ही वह अहो अहो मार्का या पूरी तरह द्वेष प्रेरित लेख की शक्ल में अवतरित होती है। उन्होंने भरसक कोशिश इस बात की है कि उनकी आलोचना लेखक और पाठक के बीच में एक पुल का काम करे। पृष्ठ संख्या 180, ऐसा पुल जिसमें लेखक और पाठक कोई घाटे में ना रहे, पाठक उनके निष्कर्षों से या व्याख्याओं से सहमत हो यह जरूरी नहीं, पर रचना के साथ किसी किस्म की बदसलूकी की शिकायत उनसे कतई नहीं की जा सकती। व्यक्ति सापेक्ष नजरिए के बावजूद पिछली शताब्दी के अंतिम दशक से वर्तमान शताब्दी के पहले दशक तक परिणाम में आलोचना की कमी की शिकायत किसी को नहीं हो सकती। किस्म किस्म की पुस्तकों की भरमार तो है ही, तरह तरह की पत्रिकाओं में समीक्षा वाले स्तंभ में नाना प्रकार के तथाकथित आलोचक यानी समीक्षक तरह तरह की रचनाओं की प्रायः प्रयोजनवती समीक्षाओं का अंबार लगाए हैं, जिन पर समीक्ष रचना के शत्रु मित्रों के अलावा कोई ध्यान नहीं देता। गंभीर आलोचना के नाम पर उंगली पर गिनाने लायक कुछ ऐसे प्रयास जरूर सामने आए हैं जिनके पीछे शोधपरक साधना साफ दिखाई पड़ती है। पिछले वर्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल की कबीर साहित्य पर केंद्रित पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की और हिंदी का लोकवृत्त फ्रांचिस्का अर्सिनी का शोध ग्रंथ जिसका हिंदी अनुवाद कवि नीलाभ ने किया, इन ग्रंथों पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है कि दोनों का विषय समसामयिक साहित्य से नहीं लिया गया है। पहली का विषय कबीर का काव्य है और दूसरी का 1920 से 40 के दौरान राष्ट्रवाद के युग में भाषा और साहित्य। क्या यह घटना इस निष्कर्ष की ओर संकेत नहीं करती कि रचनाकार और आलोचना काल के बीच समय की दूसरी सार्थक आलोचना कर्म के लिए अनिवार्य है? इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा की स्मृति से क्या वह युवा वर्ग कुछ नहीं लेना चाहेगा जो समसामयिक विषयों पर इक्का दुक्का रचनाओं के बल पर हम युवा आलोचक या उदीयमान आलोचक की तख्ती लटकाए मान्यता पाने के लिए विकल व्याकुल हैं?